एज ह्यूमन बींग, एज इंसान, हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का है, एक बुराई का है, एक सही है, एक गलत है. और ये एज ह्यूमन बींग मेरे अपने पे डिपेंड करेगा कि मैं सही रास्ते का इंतखाब करती हूँ या मैं बुराई के रास्ते की तरफ जाती हूँ. लेकिन साथ ही हमें कुरान पाक में ये भी हमें पढ़ने को मिलता है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है. और फिर हम एज मुस्लिम, हम इस बात पर भी हमारा यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता तक भी नहीं हिल सकता. तो जब अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो मेरा एज ए ह्यूमन बींग अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ चले जाना, क्या वो स्टिल मेरे हाथ में किस हद तक रह सकता है?
इसमें बहुत सी चीज़ें समझने की हैं. एक तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो आयत आपने पढ़ी कि पत्ता भी, तो उस आयत को पहले देखिए वो क्या है. वमा तस्को तुम मिन बरकत इल्ला यालमुहा, एक पत्ता भी नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता है.
राइट.
यानी उसको भी लोग गलत तरीके से बयान करते हैं. अल्लाह ने एक दुनिया बनाई है, इस दुनिया में एक एक चीज़ उसके इल्म में है, उसकी कुदरत के तहत है, वो हर चीज़ का नज़म बराह रास्त चला रहे हैं. इसी चीज़ को बयान किया है तौहीद के बाद में कि अला लहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह ने सिर्फ बनाया ही नहीं है, इस दुनिया का नज़म भी वही चला रहे हैं. और ये नज़म इल्म के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ तो इतनी बात बयान हुई. इसके बाद ये कि उन्होंने एक मखलूक बनाई जिसको हम इंसान कहते हैं, इस मखलूक के साथ उन्होंने क्या मामला किया है, बहुत से फैसले खुद कर दिए, मेरा आपका कोई दखल नहीं है, मुझे कहाँ पैदा होना था, आपको कहाँ पैदा होना था, आपके वालदैन कौन होंगे, शक्ल व सूरत क्या होगी, आपको क्या सलाहियतें दी जाएंगी, शायर पैदा किया है, अदीब पैदा किया है, इंजीनियरिंग की सलाहियत रखने वाला आदमी पैदा किया है, बेशुमार चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तय कर दी, हमारा मुल्क तय कर दिया, ज़माना तय कर दिया जहाँ हम पैदा होंगे, हमारे गिर्दो पेश का माहौल क्या होगा, उस वक्त सियासत क्या हो रही होगी, उस वक्त के माशी हालात क्या होंगे, इनमें से कोई चीज़ भी हमारे काबू में नहीं है. यानी हम पैदा होते हैं तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमें मयस्सर कर दी जाती है, इसलिए ये ज़ाहिर है उनके कब्ज़ा कुदरत में है. इसके बाद खालिक ने खुद ये बताया है कि तुम्हारे अंदर मैंने कुछ सलाहियतें रखी, उन सलाहियतों को रखने का काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन उनको नशोनुमा देना, उनको ज़माने में रूबा अमल करना, ये तुम्हारा काम है. और मैंने तुम्हें इसकी भी ताकत दी, तुम ये काम करो, उसके नताइज निकलेंगे और वो नताइज मेरे कानून के मुताबिक निकलेंगे. ऐसा ही मामला जो है वो हमारे अखलाकी एहसास का है. ये जो अच्छाई और बुराई जिसको आपने पूछा है, इसमें भी ये बता दिया गया है कि तुम्हें पूरा इख्तियार दिया गया है, रास्ते समझा दिए गए हैं, तुम्हारे अंदर इसका शऊर इल्हाम कर दिया गया है. अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम सीधा रास्ता इख्तियार करते हो या गलत रास्ता इख्तियार करते हो. इसके बाद एक कानून बयान किया गया है कि अल्लाह क्या करता है इस मामले में. वो कानून है कि जिसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अल्लाह की वो सुन्नत, अल्लाह का तरीका. कुरान मजीद इस तरह के कवानीन को, यानी जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ या अपनी मखलूकात के साथ कोई मामला करते हैं, उसको सुन्नतुल्लाह कहता है. अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका क्या है, तो उस तरीके या उस कानून को कुरान ने जगह जगह वाजे किया है. वो ये है कि जिस वक्त मैं बुराई का इरादा कर लेता हूँ, देखिए बुराई की ख्वाहिश है, वो तो हम में से हर इंसान के अंदर किसी न किसी दर्जे में पैदा होती रहती है, इरादा कर लेता हूं मुझे ये काम करना है, मेरे जमीर के अंदर अल्लाह ताला ने एक हिदायत रखी है जिसको एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लम ने बयान किया कि तुम्हारे जमीर में एक वायज है, वो टोकता है कि ये तुम गलत काम करने के लिए जा रहे हो. मैं उसकी बात को नहीं सुनता, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ के मैं उस बुराई की तरफ दो कदम भी बढ़ा देता हूं. फिर गिर्दो पेश में अल्लाह ताला ने बड़े असबाब पैदा किए हैं, कोई माँ तंबी करेगी, कोई बाप तंबी करेगा, कोई दोस्त बताएगा, कोई अजीज बताएगा, कोई आवाज़ कान में पड़ जाएगी, रोकने की कोशिश होगी, मैं नहीं रुकता. जब मैं नहीं रुकता तो उसके बाद फिर मेरे इरादे, मेरे अज़म को देखकर अल्लाह ताला शयातीन को भी इजाज़त दे देते हैं कि अब वो भी बहकाने का काम कर सकते हैं. इसको बयान किया है कि जो आदमी अपने आप को अल्लाह की याद दहानी से बेगाना कर लेता है एक बार, मैं याशो अन जिक्र रहमान, तो फिर नुकैज लहू शैताना, फिर हम एक शैतान उस पर मुसल्लत कर देते हैं. ये जो कहा जाता है कि जो अल्लाह चाहेगा, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह का जो कानून है, हिदायत उसके मुताबिक मिलेगी और उसमें पहला कदम तुम्हें उठाना है, इसके बाद अल्लाह की ताईद शामिल होगी. अब नेकी में यह ताईद कैसे शामिल होती है, जैसे ही मैंने नेकी का इरादा किया, मेरे इरादे के बाद अल्लाह ताला के फरिश्ते उसमें अपनी मदद शामिल करना शुरू कर देते हैं. Okay. यानी जैसे वहाँ शयातीन आ जाते हैं यहाँ ये आ जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ तक ही नहीं है, मैं जैसे जैसे नेकी के रास्ते पर कदम बढ़ाता हूँ तो मेरी मदद के लिए मेरे ऊपर सकीनत नाजिल होती है, इत्मीनान नाजिल होता है, मेरे सामने रास्ते खोले जाते हैं। कुछ इम्तहान का मौका जरूर गुजरता है लेकिन अल्लाह की रहमत और करम उसका होना शुरू होता है। यहाँ तक कि अगर मैं हमेशा अपनी हिफाजत करता हूँ, नेकी का रास्ता इख्तियार करता हूँ और किसी मौके पर इसका अंदेशा होता है कि मैं इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं बुराई में पड़ जाऊँगा, तो फिर अल्लाह की बुरहान सामने आ जाती है जो हज़रत यूसुफ़ के लिए सामने आ गई। तो ये जो कहा जाता है कि अल्लाह चाहेगा, तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक चाहेगा तो हिदायत मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप इरादा ना करें और हिदायत मिल जाए, आप कदम ना बढ़ाएं तो हिदायत मिल जाए, आप अजम ना करें तो हिदायत मिल जाए, आप इम्तहान में पूरे ना उतरें तो हिदायत मिल जाए। तो आप उस कानून के मुताबिक अमल करें, अल्लाह ताला अपनी तौफीक उसमें शामिल करता है। उससे इन्हराफ करके चले तो शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं। ये जो मोहर लगा दी जाती है, दिल बंद कर दिए जाते हैं, तो वो भी पहले मरहले में नहीं किए जाते। यानी जब मैं जिद और हठधर्मी के साथ बुराई के रास्ते पर इसरार करता हूँ, उसके बाद फिर ये सारे मामला होते हैं। तो अल्लाह के चाहने का मतलब ये है कि अल्लाह ना किसी को हिदायत अललटप देता है, ना किसी को गुमराही में ऐसे डाल देता है जैसे बादशाह सलामत ने इधर के फाइलों पर एक फैसला कर दिया, इधर के फाइलों पर एक फैसला कर दिया। नहीं, वो अपने कानून के मुताबिक ये काम करता है और वो कानून ये है।
अच्छा, लेकिन जावेद साहब, आप अब जरा इसकी वजाहत कीजिएगा। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बुराई का इरादा, न सिर्फ उन्होंने इरादा बल्कि इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वो निकले, तलवार लेकर निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दे दी। यानी आपकी ये जो अभी डिस्कशन है, इसमें तो ये कि उन्होंने इरादा भी किया, फिर वो आगे भी बढ़े, तो शयातीन उनकी तरफ नहीं गए, अल्लाह ताला ने तो उन्हें हिदायत दे दी, ये फिर कैसे हुआ?
वो सारा ही काम हुआ। देखिए, बात ये है कि एक तासुब की पट्टी थी जो आँख के ऊपर बंधी हुई थी, गिरदो पेश की आवाज़ें भी आ रही थी, कौमी हमीयत के जज्बात भी गुमराह करने के लिए काफ़ी थे, उनके अंदर एक शदीद रद्दअमल उस दावत के बारे में था, उनके करीबी आयजा भी मुतासर हो रहे थे और कबायली माशरे में इसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। इसने एक ख़ास तरह का इश्तियाल उनकी तबीयत में पैदा किया, वो निकले वहाँ से।
ठीक।
अच्छा, ये जो इश्तियाल के आलम में निकलना होता है, ये कोई बड़ा सोचा समझा इकदाम नहीं होता, लेकिन फिर भी बहरहाल अगर इरादा करके वो आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने अब रोकने का बंदोबस्त किया। वो रोकने का बंदोबस्त जो है वो हर एक आदमी के लिए होता है। यानी जब मैं इरादा करके आगे बढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला की तरफ से, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि मेरे अंदर का वाइज भी फौरी तौर पर वाज कहना शुरू कर देता है। वालदैन, रिश्तेदार, आइज़ा, अकरबा, रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें, बारहा आपने देखा होगा कई वाकयात हैं कि एक आदमी घर से निकला, उसने ख्याल किया कि आज रात तो मुझे बड़ा डाका डालना है, पूरा इरादा कर लिया, अपने जथे को भी इत्तला कर लिया, बहुत सामान कर लिया, रस्ते में ख्याल हुआ, किसी मस्जिद के पास बैठ गए, वहाँ किसी का आवाज़ सुना और लौट आए।
तो होता है ऐसा,
ये उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। यानी वो घर से निकले हैं, उन्होंने इरादा किया है, लेकिन चूंकि अपने बातिन में खैर रखते थे, यानी वो जिद और हठधर्मी मौजूद नहीं थी, एक वक्ती नौयत के इश्तियाल की और एक हमीयत की कैफियत है जिसमें वो मुब्तला हुए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने अल्लाह की किताब सुनी और अपनी बहन की इस्तकामत देखी गैर मामूली, तो उसका उनके ऊपर असर हुआ और उसके बाद उनके दिल की हालत तब्दील हो गई। हम सबके साथ ऐसे ही होता है, आप इरादा करके जब निकलते हैं तो अल्लाह ताला की सारी ताकतें अगर आप अंदर से ठीक है तो आपको दुरुस्त करने के लिए, बुराई से रोकने के लिए सरगर्म अमल हो जाती है। तो ये बात ही ठीक नहीं है कि वो कोई जिद और हठधर्मी के आलम में निकले थे, जो फजा उस वक्त बनी हुई थी, और ये फजा हमें हर रोज इसका तजुर्बा होता है। बेशुमार लोग हैं कि गिरदो पेश से एक बात सुन रहे होते हैं, कोई नई दावत पैदा हो जाए तो उलमा इश्तियाल अंगेज तकरीरें करना शुरू कर देते हैं, दानिशवर लिखना शुरू कर देते हैं, कौम की सतह पर मुजाहरे होना शुरू हो जाते हैं, एक जज्बात की कैफियत पैदा होती है। तो उसमें एक आदमी निकलता है तो ऐन वक्त के ऊपर कोई सही बात उसकी समझ में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनके साथ। तो अल्लाह ताला हिदायत देते ही इस तरह है कि आप बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाए ना, वो सुनने के लिए जैसे ही तैयार हुए बात वाजे हो गई उनके ऊपर।